Blessed Savior, Om Namah Siddhavyah, Om Namah Siddhavyah, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sauvasahunam, Jainiya Kasaya Pahuda, Maneyanaya Mujjalam Anantatham, Gahahi Vivariyam Tam, Gunahara Bhadarayam Vande. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दूसरी पुस्तक जो द्वितीय अर्थाधिकार पयड़ी विभक्ति प्रकृति विभक्ति, उसकी अभी यहाँ चर्चा चलेगी। हम पृष्ठ संख्या 7 पर आ गए हैं। कल हमने प्रस्तावना भी विस्तार से देखी थी, अब यहाँ विभक्ति और अविभक्ति का अर्थ बता रहे थे कि द्रव्यों में समान प्रदेश होगे तो उसको अविभक्त कहा था। और क्या कह रहे हैं? मैंने अविभक्ति कहा, आप क्या कह रहे हैं? छह नंबर का पृष्ठ देखना, उसमें जो 7 नंबर का पॉइंट था और चूर्णी सूत्र था ओरिजिनल, उसमें क्या लिखा है? तुल्य प्रदेश वाला एक द्रव्य तुल्य प्रदेश वाले दूसरे द्रव्य के साथ क्या लिखा मिला कि नहीं मिला? क्या विभक्ति के अविभक्ति है? इतना टाइम तो अविभक्ति है ना, वो विभक्ति है ना, अलग असमान, और अविभक्ति ने समान। हाँ, इसकी बात तो हमने कल पढ़ी थी। अब वहां कहते हैं कि अर्पित ने मुख्यता, ये कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के साथ वो विभक्ति है कि अविभक्ति है, तो हम एक साथ दोनों ही धर्मों को नहीं कह सकते, इसलिए उसको अवक्तव्य कहा था। ये बात हमने कल पढ़ी थी, 7 नंबर पृष्ठ पर आए थे हम। अब यहाँ चूर्णी सूत्र जो नया क्षेत्र विभक्ति संबंधी, उसकी बात चलेगी। सूत्र जो है ऊपर से चौथी लाइन में, और उसका ऊपर जो सूत्र है प्राकृत में देखेंगे। खेत विहत्ति तुल्य पदेशो गाढ़म, तुल्य पदेशो गाढ़स अविहत्ति। अब क्षेत्र विभक्ति का निक्षेप का कथन करते हैं। नहीं, देखो आगे जो बात बताई थी ना, वहां तुल्य प्रदेश का तुल्य प्रदेश के साथ कहते हैं, अब यहाँ हाँ एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ प्रदेश समान है, हाँ उसको भी ले सकते हैं वहां, या जीव और धर्म द्रव्य ऐसा भी ले सकते हैं। यहाँ क्षेत्र दस नंबर कल्पना हुआ विस्तार से, उसके बाद जो है ना क्षेत्र विभक्ति उसकी बात चल रही है। ऊपर हमने सूत्र भी अभी पढ़ा था, उसका अर्थ कहते हैं। अब क्षेत्र विभक्ति निक्षेप का कथन करते हैं। तुल्य प्रदेश वाला अवगाढ़ दूसरे तुल्य प्रदेश वाले अवगाढ़ के साथ अविभक्ति है, यानी समान है। अब अवगाढ़ ने वो कितनी अवगाहना है, कितना क्षेत्र रोकता है, उसको यहाँ कहा। सूत्र में खेत विहत्ति इस पद का उच्चदे इस क्रिया के साथ संबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता। यानी कहने में आता है, ऐसा कहे ना। अब यहाँ शंका समाधान चलेगा। क्षेत्र किसे कहते हैं, उसका समाधान। आकाश को क्षेत्र कहते हैं क्योंकि क्षेत्र नियम से आकाश है और आकाश से विपरीत नो क्षेत्र है, ऐसा आगम वचन है। फिर समान, जिसके प्रदेश समान होते हैं वह तुल्य प्रदेश वाला कहलाता है। अब शंका, प्रदेश किसे कहते हैं, जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे आकाश के अवयव को प्रदेश कहते हैं। यानी आकाश का सबसे छोटे में छोटा जो कोई यूनिट है उसको प्रदेश कहते हैं, कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, छोटे में छोटा। जो तुल्य प्रदेश वाला अवगाढ़ है वह तुल्य प्रदेश वाला अवगाढ़ कहलाता है। वह तुल्य प्रदेश वाले अवगाढ़ के साथ अविभक्ति अर्थात समान है, जिनका अवगाढ़ समान है, प्रदेश आकाशों के प्रदेश समान रूपते हैं, उनको तुल्य प्रदेश वाला कहा, उसी को अविभक्ति कहते, समान को अविभक्ति कहना। और असमान प्रदेश वाले अवगाढ़ के साथ विभक्ति है। तथा युगपत दोनों की अपेक्षा अवक्तव्य है, कोई द्रव्य किसी के साथ समान है किसी के साथ असमान है, परंतु एक साथ कह नहीं सकते, हाँ, तो उसको कहते हैं अवक्तव्य है। फिर शंका, विभक्ति और अवक्तव्य ये दोनों विकल्प चूर्णी सूत्र में नहीं कहे हैं, फिर यहाँ किस लिए कहे हैं? चूर्णी सूत्र में तो क्या कहा था, पहले तुल्य पदेशियम दौवम कहा था, फिर क्षेत्रव्य में विहत्ति में तुल्य पदेश अवगाढ़म तुल्य पदेश अवगाढ़स्य अविहत्ति, अविहत्ति की बात की थी, विहत्ति और अवत्तव की बात तो नहीं की थी चूर्णी सूत्रकार ने, तो यहाँ कैसे लिखी है ये बात पता रहे, पूछ रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि उपर्युक्त तो दोनों विकल्प, यानी ये जो दो अन्य पॉसिबिलिटीज है, दोनों विकल्प, एक तो अविभक्ति भी हो सकती है किसी द्रव्य के साथ, समानता भी हो सकती है असमानता भी हो सकती है, और एट अ टाइम किसी के साथ समान किसी के साथ असमान है, परंतु एट अ टाइम कह नहीं सकते, उसको अवत्तव कहा, युगपत नहीं कह सकते। समाधान, क्योंकि उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त ने ऊपर बताए हुए दोनों विकल्प, यानी अन्य जो दो वहां हो सकते हैं पर्याय यानी पॉसिबिलिटीज, देशामर्शक भाव से सूत्र के द्वारा कहे गए हैं। देशामर्शक ने कुछ बताया है, उससे जो नहीं बताया वो भी जानने में आता है। देशाय ने एक देश बताया है, उससे बाकी भी वहां हम डिराइव कर सकते, उसको कहते देशामर्शक, सूत्र के द्वारा कहे गए हैं, अतः उनका कथन करने में कोई दोष नहीं है। तो वीरसेन स्वामी ने उसको खोलकर यहाँ स्पष्ट कर दिया है, एक बात बताई है और बाकी भी वहां लागू होती है, ये तो वे तो जानते थे, उनको ये भी पता था कि हमारे जैसे हो गए, जितना लिखा है उतना ही मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे, तो उन्होंने उसको भी खोलकर बता दिया। अब काल विभक्ति की बात करेंगे। काल अभिहत्ति तुल्य समयम तुल्य समयस्य अविहत्ति। देखो ये क्या कहते हैं, ये विभक्ति और अविभक्ति यानी समानता असमानता, इसकी बात, इतनी क्षेत्र की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, और फिर बाद में यहाँ कौन सा विषय वो कहेंगे, क्योंकि पहले किसको थप्पो किया था, कर्म, कर्म को, कर्म नो आगम तद व्यतिरिक्त विभक्ति है ना। तो ये जो बाकी अन्य जो निक्षेप घटित होते हैं विभक्ति शब्द के अन्य अन्य अर्थ, वो यहाँ घटित करके दिखा रहे हैं। नाम विभक्ति हमने कल देखा था, नाम विभक्ति यानी किसी का नाम विभक्ति रख देना, ये नाम विभक्ति हुई। स्थापना विभक्ति, किसी चीज में ये विभक्ति ऐसे कह देना, वो स्थापना विभक्ति, वो भी सद्भाव असद्भाव के दो प्रकार के होते हैं। देखो ये लिस्ट निकालो, निक्षेप यहाँ बताए थे उन्होंने 5 नंबर के पृष्ठ पर, वहां तो उन्होंने शुरू किया था 4 नंबर पर है ये जो निक्षेप बताए हैं, 4 नंबर पर जो सूत्र है चूर्णी सूत्र, जहाँ वो फूल जैसा चिन्ह है वो चूर्णी सूत्र है, उसमें दूसरी लाइन में नाम विभक्ति, स्थापना विभक्ति, द्रव्य विभक्ति। द्रव्य में अभी हमने आगम नो आगम, फिर उसमें नो आगम के भेद देखे थे, फिर क्षेत्र विभक्ति, काल विभक्ति, गणना विभक्ति, संस्थान विभक्ति और भाव विभक्ति। अब ये नो आगम में तद्व्यतिरिक्त वाला जो भेद है कौन सा, कर्म, कर्म नो आगम तद्व्यतिरिक्त, उसको अलग रखे, क्योंकि इस पुस्तक में तो उसी की चर्चा चलेगी, कर्म संबंधी मोहनीय कर्म की बात, और बाकी जो है क्षेत्र काल उसकी बात अभी बता रहे हैं। तो हम ये विभक्ति यानी समानता, क्षेत्र की अपेक्षा समानता, जब समानता कहते तो असमानता भी होगी वहां, विहत्य यानी असमानता, विभाग वो उससे भिन्न है, असमान है, और अविभक्ति यानी समानता। तो यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा बता चुके, अभी काल की अपेक्षा बता रहे हैं। हम अभी 8 नंबर के पृष्ठ पर आए हैं, ऊपर सूत्र पहले पढ़ेंगे, काल विहत्ति तुल्य समयम तुल्य समयस्य अविहत्ति। अब काल विभक्ति का अर्थ कहते हैं तुल्य समय वाला द्रव्य तुल्य समय वाले द्रव्य की अपेक्षा अविभक्ति है। अब द्रव्य की अपेक्षा हम देखेंगे कौन सा द्रव्य बड़ा है ज्यादा, बोलो कौन से द्रव्य ज्यादा समय वाला होगा, यानी द्रव्य कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, द्रव्य की स्थिति कितनी है, अनादि अनंत है ना, तो उसमें से कौन सा समान है कौन सा असमान है, तो काल की अपेक्षा सभी समान है, सभी अनादि अनंत है, इस तरह से हम घटित करते हैं। अब जो व्यंजन पर्याय है ना, एक लंबे काल तक वाली जो समयों की पर्याय, उसमें असमानता हो सकती है, परंतु यहाँ द्रव्य को लिया है ना। अब काल विभक्ति निक्षेप का अर्थ कहते हैं चाहिए ना, इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में काल विहत्ति पद दिया है। तुल्य अर्थात समान समयों को तुल्य समय कहते हैं, वे तुल्य समय जिस द्रव्य के पाए जाते हैं वह द्रव्य तुल्य समय वाला कहा जाता है। वह तुल्य समय वाला द्रव्य अन्य तुल्य समय वाले द्रव्य की अपेक्षा अविभक्ति अर्थात समान है, क्योंकि यहाँ काल की अपेक्षा समानता विवक्षित है। जब हम काल की अपेक्षा समानता की बात करते हैं, वो क्षेत्र छोटा है क्या बड़ा है उसकी बात नहीं लेना है, काल कम है ज्यादा है उसको लेना, तथा वह विवक्षित द्रव्य असमय वाले असमान समय वाले द्रव्य की अपेक्षा विभक्ति है, और समान तथा असमान दोनों समयों की एक साथ प्रधान रूप से विवक्षा करने की अपेक्षा अवक्तव्य है। अभी हम द्रव्य को काल की अपेक्षा जो असमान असमान घटित करते हैं, तो किसी विशिष्ट लंबे काल तक की जो पर्याय है उसको ले सकते हैं, यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा द्रव्य को कह सकते हैं। हम कहते हैं ये हमारा छोटा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है, वो जो है काल की अपेक्षा वहां लगा सकते किसी विशिष्ट पर्याय पर। अब गणना, गणन विहत्ति है एको एकस अविहत्ति। गणना विभक्ति की अपेक्षा, गणना करना है ना, गणन करना है ना, मापना, संख्याओं में हम कहते ना एक है वो एक के समान है, दो है वो दो के समान है, ऐसा कह रहे संख्या की बात है। गणना विभक्ति की अपेक्षा एक संख्या का अविभक्ति है, एकस्य यह षष्ठी विभक्ति रूप निर्देश तृतीय विभक्ति के अर्थ में समझना चाहिए। एक संख्या विशेष, संख्या विशेष यानी कोई विशिष्ट संख्या पर्टिकुलर, जैसे 9 नंबर लिया तो 9 है वो 9 के साथ समान है, अन्य के साथ असमान है, यानी अन्य के साथ वो क्या है, विभक्ति है, और नव के साथ अविभक्ति है। यहाँ तो केवल संख्या को ले रहे हैं, यहाँ पर द्रव्य पर वैसे घटित नहीं किया है, संख्या पर घटित किया है। एक संख्या विशेष, एक संख्या विशेष के साथ अविभक्ति अर्थात समान है, तथा वह विसदृश संख्या वाली गणना के साथ, या केवल गणना लेनी है, हम नापते हैं कोई संख्या को, विसदृश यानी वो जो वही नंबर नहीं है, वही संख्या नहीं है, ऐसे अन्य संख्या है, तो वो विशिष्ट संख्या छोड़कर अन्य सभी के साथ वो विसदृश है, समान नहीं है। वह विसदृश संख्या वाली गणना के साथ विभक्ति अर्थात असमान है, और सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार की गणनाओं की युगपत विवक्षा होने पर अवक्तव्य है। जैसे नव की नव के साथ समानता है और अन्य के साथ असमानता है, ये हम क्रम से तो कह सकते हैं, एक साथ जान भी सकते, परंतु एक जान एक साथ कह नहीं सकते, युगपत कह नहीं सकते। नव पृष्ठ पर आते अभी। संठान विहत्ति दुविहा संठान दोच संठान व्यपदोच। संस्थान और संस्थान विकल्प के भेद से संस्थान विभक्ति दो प्रकार की है। त्रिकोण चतुष्कोण और गोल आदि को संस्थान कहते हैं, आकार है ना, तथा त्रिकोण चतुष्कोण और गोल संस्थानों के भेदों को संस्थान विकल्प कहते हैं। ये उसके और कोई भेद करेंगे तो उसको संस्थान विकल्प कहेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज। इस प्रकार संस्थान विभक्ति दो प्रकार की ही होती है, क्योंकि और कोई भेद संभव नहीं है। पहले ये दो प्रकार के वो बता चुके, अब उसमें विभक्ति बताएंगे। संठान दो वट्टम वट्टस्य अविहत्ति। संस्थान की अपेक्षा विभक्ति का कथन करते हैं, एक गोल द्रव्य दूसरे गोल द्रव्य के साथ अविभक्ति है। अब आकार की अपेक्षा, द्रव्यों के आकार की अपेक्षा उसकी अविभक्ति कहते हैं। संठान दो इस पद के साथ विहत्ति उच्चदि इतने पद का संबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। अन्य द्रव्य में स्थित गोलाई का अन्य द्रव्य में स्थित गोलाई के साथ अविभक्ति अर्थात अभेद है, यानी समानता है। शंका। भिन्न द्रव्य भिन्न क्षेत्र भिन्न काल और भिन्न भाव में स्थित संस्थानों का अभेद कैसे हो सकता है? दो भिन्न द्रव्य है, उनका अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव भिन्न भिन्न है, तो यहाँ संस्थानों को अभेद कहा, समान नहीं कहा। ऊपर लिखा ना अभी कि उनका विभक्ति अविभक्ति यानी अभेद है। समाधान। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र और काल असंस्थान रूप है, इसलिए इनके भेद से संस्थानों का भेद मानने में विरोध आता है। द्रव्य है वह संस्थान नहीं है, क्षेत्र है वह संस्थान नहीं है, काल है वह संस्थान नहीं है, इसलिए उसकी अपेक्षा संस्थानों में कोई भेद ही नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रतिभास के भेद से प्रतिभासमान पदार्थ में भेद माना जाता है। प्रतिभास का अर्थ क्या होता है? प्रतिबिंब ने प्रतिभास ने क्या, कौन सा आभास? इल्यूजन्स। हाँ, ज्ञान। प्रतिभास ने ज्ञान, प्रतिभास होना, ज्ञान होना, ग्रहण होना, उसको प्रतिभास कहते, प्रतिभास ने ज्ञान। तो प्रतिभास के भेद से प्रतिभासमान यानी जो जानने में आए वो प्रतिभासमान पदार्थ यानी गेय पदार्थ में भेद माना जाता है, परंतु वह यहाँ पाया नहीं जाता है, इसलिए अभेद स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई ऐसी शंका करे कि गोल दो द्रव्यों में समानता ही पाई जाती है, एकत्व नहीं। अच्छा, यहाँ एकत्व इन्हें अभेद सिद्ध कर रहे हैं, सो उसका ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समानता और एकता में कोई भेद नहीं है। अच्छा, यानी समानता के अर्थ में एकता उन्होंने बताई है। द्रव्यादि की अपेक्षा जब गोलाइयां द्रव्यादिगत विवक्षित होती हैं, तब उनमें समानता मानी जाती है, और जब उनमें द्रव्यादि की विवक्षा नहीं रहती तो वे एक कहलाती है। क्या कहना चाहते हैं? यदि भिन्न दो द्रव्यों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो हम समान कहेंगे, यह भी गोल है वह भी गोल है, परंतु गोलाई है, गोलाई तो गोलाई होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता, ये बात बताना चाहते हैं। क्षेत्र ने यहाँ प्रदेश को क्षेत्र कहा था ना, आकार अलग है, शेप अलग है और साइज अलग है, नहीं समझे? गोल त्रिकोण ये आकार है, वो संस्थान है, और वो कितना प्रदेशी है वो उसका क्षेत्र है। वो बड़ा त्रिकोण छोटा त्रिकोण दोनों ही त्रिकोण है, वो क्षेत्र उसका भिन्न हो सकता है, परंतु संस्थान एक है। हाँ, गोल है, गोल। हाँ, वो नींबू खट्टा होगा और वो मीठा होगा, वो भाव में। इस प्रकार यह बात लोक प्रसिद्ध है, इसलिए एक गोलाई की दूसरी गोलाई के साथ अविभक्ति स्वीकार करना चाहिए। अब दसवां पॉइंट, यानी क्षेत्र की अपेक्षा उसमें भेद है, परंतु गोलाई से इतना ही लेना है हमको, वो कितना क्षेत्र वाला है, कितने काल का है, कितने द्रव्य में है, वो उसकी बात नहीं है, बस गोलाई। जैसे हम सत की अपेक्षा एक कहते हैं ना, सत हमने सब में लिया तो सत सब एक है, महासत्ता में भी लेते हैं ना, यहाँ गोलाई लेना है, संस्थान की अपेक्षा एक है विशेषार्थ। यहाँ संस्थान के विषय में दो शंकाएं उठाई गई है। पहली यह है कि संस्थान द्रव्य आदि की तरह अलग तो पाए नहीं जाते, वे तो द्रव्यादिगत ही होते, यानी संस्थान द्रव्यों को छोड़कर कोई अन्य कोई संस्थान नाम का अलग पदार्थ तो नहीं है, द्रव्यगत होते हैं, द्रव्य में ही वो है, द्रव्य का ही वो आकार है, और द्रव्यादि परस्पर भिन्न होते हैं, द्रव्य भिन्न है और ये जो आकार है वो द्रव्यगत होते हैं, तो इसलिए वो भी भिन्न होने चाहिए, ऐसी शंका उठाई गई थी। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न रहता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है, अतः इनके आश्रय से रहने वाले संस्थान एक कैसे हो सकते हैं? उसको अभेद क्यों कहा, एक क्यों कहा? वीरसेन स्वामी ने इस शंका का जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि स्वयं द्रव्यादि संस्थान रूप नहीं है, यानी द्रव्य का कौन सा संस्थान है, आकार है हम कहते हैं, परंतु द्रव्य है वह संस्थान नहीं है, उसमें कुछ भिन्नता है। जो करना वो जहां दिख रहा है, जो द्रव्य इस समय त्रिकोण है वह कालांतर में गोल हो जाता है, इसी प्रकार अन्य के संबंध में भी जानना। अभी हम वो गोल त्रिकोण की बात छोड़ो, अभी कोई कुत्ता है गाय है और वो मरकर मनुष्य हुआ, तो वही जीव जो अलग संस्थान था अभी उसका संस्थान अलग हो गया, अतः द्रव्यादिक से संस्थान का कथनचित भेद सिद्ध हो जाता है, और जब संस्थान द्रव्यादिक से भिन्न है तब द्रव्यादिक के भेद से संस्थान में भेद मानना युक्त नहीं। संस्थानों में यदि भेद होगा तो स्वगत भेदों की अपेक्षा से ही होगा। स्वगत भेद यानी संस्थानों का भेद कैसा है, त्रिकोण चौकोन गोल इनमें भेद है, परंतु द्रव्य के भेद से उनमें भेद नहीं है। जो कोई गोल 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 पदार्थ है वे सब गोलाई उनमें एक है, वो समान है, गोल से भिन्न क्या है तो त्रिकोण वो उससे भिन्न है, चौकोण उससे भिन्न है, परंतु द्रव्य की भिन्नता से उसमें भिन्नता नहीं मानी है, तो संस्थान यानी द्रव्यगत भेद नहीं स्वीकार किया है, संस्थान इटसेल्फ भिन्न भिन्न हो गए तो उसमें भेद स्वीकार किया है। क्या कहते हैं, संस्थानों में यदि भेद होगा तो स्वगत भेदों की अपेक्षा से ही होगा, अन्य द्रव्यादि की अपेक्षा से नहीं। दूसरी शंका यह है कि पृथक दो द्रव्यों में जो समान दो गोलाया रहेगी उन्हें समान कहना चाहिए एक नहीं। दो भिन्न भिन्न द्रव्य है और दोनों गोल है तो उनको समान कहो, एक क्यों कहते हैं? संस्थान को एक क्यों कह दिया, समान कहते थे। वीरसेन स्वामी ने इस शंका का जो समाधान किया है उसका भाव यह है, उन समान दो गोलायों में जो हमें पार्थक्य दिखाई देता है, पार्थक्य क्या होता है? पृथकता। पार्थक्य शब्द कैसा तैयार हुआ? पृथक्त्व यानी भिन्नता। क्या कहते हैं, उन समान दो गोलाइयों में जो हमें पार्थक्य दिखाई देता है वह द्रव्यादि भेद के कारण दिखाई देता है। भिन्न द्रव्य है इसलिए हमें वो भिन्न भिन्न भासित हो रहे, भिन्न भिन्न ख्याल में आ रहे हैं। यदि हम द्रव्यादि की विवक्षा न करें तो वे गोलाइयां एक है। भिन्न द्रव्यों की है वो बात मत ले लो, गोलाई 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 इतना ले लो तो वो एक है। हमने प्रातः एक गोलाई देखी और मध्यान्ह में भी उसे देखा, इस प्रकार काल भेद से उसमें भेद हो जाता है। पर यदि काल भेद की विवक्षा न करे तो वह एक है। सुबह हमने गोलाई एक देखी थी और अभी एक देखी है, काल की अपेक्षा मत करो कि कब देखी क्या देखी, तो वह एक ही है। एक आदमी ने किसी सुंदर प्रतिमा को देखकर शिल्पी से, शिल्पी ने वो कारीगर जो होता है ना मूर्तियां बनाने वाला, उसी आकार की दूसरी प्रतिमा बनवाई। प्रतिमा के बन जाने पर बनवाने वाला उसे देखकर कहता है वही है, इसमें कोई संदेह नहीं, आकार वही है कहते ना। यद्यपि यह पहली प्रतिमा से यह दूसरी प्रतिमा भिन्न है पर आकार भेद न होने से आकार की अपेक्षा वे एक कही जाती है। इस प्रकार द्रव्यादि की अपेक्षा न रहने पर संस्थानों में अभेद सिद्ध हो जाता है। अब आगे का सूत्र, व्यप्पेन वट्ट संठानानि असंखेज्जा लोगा। ओहो, विवक्षित गोलाई त्रिकोण चतुष्कोण अथवा आयत परिमंडल संस्थान के साथ, अरे ऊपर मैंने दूसरा पढ़ा क्या? हाँ, पहली लाइन पढ़नी थी मैंने, भूल से आगे वाली पढ़ी। फिर पढ़ते चूर्णी सूत्र 10 नंबर पर पहली लाइन में ऊपर प्राकृत में, वट्टम तंसस्सवा चौरंसस्सवा आयद परिमंडलस्सवा विहत्ति। विवक्षित गोलाई त्रिकोण चतुष्कोण, विवक्षित है ने गोलाई की बात करेंगे तो गोलाई का गोलाई के साथ, त्रिकोण का त्रिकोण के साथ, तो विवक्षित गोलाई त्रिकोण चतुष्कोण अथवा आयत परिमंडल संस्थान के साथ विभक्ति है। चूंकि गोलाई की त्रिकोण आदि संस्थानों के साथ सदृशता नहीं पाई जाती है इसलिए गोलाई त्रिकोण आदि के समान नहीं है। इसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण आदि का भी कथन करना चाहिए। कोई एक आकार जो है गोलाई है वो त्रिकोण के समान नहीं है तो त्रिकोण के साथ वो विभक्ति है, चतुष्कोण के साथ विभक्ति है, पंचकोण षटकोण सब अन्य जो गोलाई को छोड़कर अन्य आकार है अन्य संस्थान है उसके साथ उसकी विभक्ति है, और गोलाई हो गए तो अविभक्ति है। अब कहते व्यप्पेन वट्ट संठानानि असंखेज्जा लोगा, उत्तरोत्तर भेदों की अपेक्षा गोल आकार असंख्यात लोक प्रमाण है। गोल आकार असंख्यात लोक प्रमाण है यह बात आगम से ही जानी जाती है, युक्ति से नहीं। क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण संख्या में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। क्या बात है, फिर आगे एवं तंस चौरंस आयत परिमंडलानम, जैसे गोल के बारे में बताया वैसे ही, यानी अलग अलग आकार असंख्यात लोक प्रमाण नहीं किए उन्होंने, गोल 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 जो है गोल में ही असंख्यात लोक प्रमाण गोलाई होती है ऐसा कहते, और वो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा उसमें ये असंख्यात लोक प्रमाण उसमें अपने कोई प्रवृत्ति नहीं चलती। गोलाई 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 अलग अलग प्रकार की गोलाई या असंख्यात लोक प्रमाण है ऐसा कहते हैं। हाँ, एक गोलाई दूसरी अन्य प्रकार की गोलाई तीसरे प्रकार की गोलाई इस तरह से। साइज को कहाँ यहाँ है, साइज तो क्षेत्र में आ जाएगा, छोटा बड़ा क्षेत्र में होगा, वही हम नहीं पकड़ सकते, यही तो बात बता रहे यहाँ पर। उसमें उत्तर उत्तर भेद, उत्तर भेद है ना, वो क्या नहीं, वो सब विभक्ति होगी, अलग अलग प्रकार होते हैं ना, उत्तर भेदों की अपेक्षा विभक्ति होगी उसमें। हाँ, वही तो हम कहते हैं ना, गोल तो गोल होगा, उसमें क्या होगा अभी देखते हैं आगे भी। हम कहेंगे लंब गोल भी कहते हैं ऐसा, इस तरह से उसमें फर्क हो सकता है, गोलाई की अपेक्षा अलग भेद है उसमें, जैसे त्रिकोण 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 में फर्क हो सकता है, एक तो समचतुर्थ त्रिकोण, एक दो बाजू समान है वो ऐसा त्रिकोण, एक तीनों भाग तीनों, हाँ गोलाई में भेद कह रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ? किसमें, राउंड में, राउंड में अभी मैंने कहा ना लंबा कार, लंब भी उसको भी राउंड ही कहते हैं। हाँ एक, हाँ उसी में लेना है। हाँ लंबा गोल एकदम समान ऐसा गोल त्रिज्या से, यानी हम समान त्रिज्या वाला है और ऐसा लंबा गोल, वो सब गोल ही कहलाएंगे। ये गोल में कंकणाकृति को भी गोल कहते हैं, और जो स्फियरिकल है वो भी गोल कहलाता है, उसको भी ले सकते हैं ना हम। ये गेंद है वो उसका गोल, यानी वो स्फियर है एक्चुअली। हाँ और गोल यानी तो चूड़ी का है, यानी कंकणाकृति कहेंगे अभी जो कुछ उसमें होगे भेद। हाँ आयत यानी लंब चौकोर। हाँ देखो अभी यहाँ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एवं तंस चौरंस आयत परिमंडलानम, तंस ने वो त्रिकोण को तंस कहा था, इसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमंडल के विषय में भी जानना चाहिए। त्रिकोण में तो हम समझ सकते हैं ना, हम समद्विभुज स्कूल में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, याद मत दिलाना कहते हैं। हाँ एंगल तो तीन है, परंतु वो ट्रायंगुलर में भी कितने अलग अलग टाइप हो गए कि नहीं, एक तो समान होते हैं, तीनों समान है, तीनों कोण भी समान हो गए, हम देखते हैं ऐसा एक विशाल कोण कर किया हुआ भी ट्रायंगल हो सकता है। हाँ वो अभी डालो कितने चाहिए उतने कॉम्बिनेशन, एक तो सभी तीन एंगल समान है, एक होते हैं दो एंगल समान ऐसा, अभी ऐसा भी है ना। हाँ ये देखो ये ज्यादा हुआ विशाल कौन विशाल कौन बन ये तो डिग्रीज में, अभी यह डिग्रीज हम हमने तो हाँ वो अच्छा है ना अभी आगे बढ़ते देखो, जिस प्रकार गोल संस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प कहे हैं, उसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमंडल आकारों के भी विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण होते ऐसा कथन करना चाहिए। अरे कितने कहाँ बुद्धि चलेगी है। अच्छा हुआ भूमिते में हमने थोड़ा ही पढ़ा। आगे सरिसवट्टम सरिसवट्टस्स अविहत्ति। वट्ट ने वो गोल को वट्ट कहा, वृत्त कहते ना वट्ट, वृत्ताकार शब्द उसी से आया वृत्ताकार। सदृश गोल संस्थान दूसरे सदृश गोल संस्थान के साथ अविभक्ति है। सूत्र में आए हुए सरिसवट्टस्स इस पद का अर्थ समान गोलाई होता है। गोलाई के जो असंख्यात भेद है उसमें समान गोलाई को लेना। सरिसवट्टस्स पद में जो षष्ठी विभक्ति आई है वह तृतीय विभक्ति के अर्थ में जानना चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ समान गोल आकार दूसरे समान गोल आकार के साथ अविभक्ति अर्थात अभिन्न है तथा समान गोल आकार असमान गोल आकार के साथ अविभक्ति है। सॉरी विभक्ति विभक्ति समान गोल आकार असमान गोल आकार के साथ विभक्ति है तथा वह समान गोल आकार दूसरे समान और असमान गोल आकारों की एक साथ विवक्षा करने की अपेक्षा यानी युगपत कथन करने की अपेक्षा अवक्तव्य है। एवं सवत्थ इसी प्रकार सर्वत्र कथन करना चाहिए यानी वो त्रिकोण के बारे में चतुष्कोण के सभी आकारों के बारे में ऐसा ही कथन होना चाहिए। जिस प्रकार एक गोल आकार के तीन भंग कहे, ये भंग कहे ना कौन कौन से विभक्ति अविभक्ति और अवक्तव्य, उसी प्रकार शेष असंख्यात लोक प्रमाण गोल आकारों का अलग अलग तीन भेद रूप से कथन करना चाहिए। तथा इनसे अतिरिक्त जो असंख्यात लोक प्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत आयत हुआ आयत परिमंडल आकार है उनका भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए। शंका शेष असंख्यात लोक प्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमंडल संस्थानों के भी तीन भंग कहना चाहिए यह अर्थ कहाँ से उपलब्ध होता है, उसका समाधान। एवं सवत्थ इस निर्देश से निर्देश ने कथन यह अर्थ उपलब्ध होता है क्योंकि यह सूत्र केवल गोल आकार के शेष भेदों की अपेक्षा ही नहीं कहा है किंतु संस्थान के अनुक्त अनुक्त ने नहीं कहे हुए गोल को तो बताया त्रिकोण चौकोण को इस सूत्र में नहीं बताया तो अन्य सबके साथ ये एप्लीकेबल है कहेंगे तो जो नहीं बताया उसको भी त्रिकोण चौकोण को नहीं कहा है उसको भी यहाँ ले लेना। अनुक्त समस्त विकल्पों की अपेक्षा से भी कहा है विकल्प यानी अन्य भेदों की अपेक्षा भी यही कथन वहां लागू होता है। जासा भाव विहत्ति अभी हमने देखा था ना कितनी चार नंबर पर देखी थी लिस्ट कहाँ देखी थी चौथे पेज पर। देखो नाम स्थापना द्रव्य को थोड़ा हमने कर्म नो आगम को बाजू रखा था क्षेत्र विभक्ति देखी काल विभक्ति देखी गणना विभक्ति देखी संस्थान विभक्ति देखी अब भाव विभक्ति की बात यहाँ बताते हैं। तो जा सा भाव विहत्ति सा दुविहा आगमदोय नो आगमदोय यहाँ जो एक आंकड़ा लिखा है जरा नीचे देखते हैं हमें हमेशा मालूम है भाव निक्षेप तो दो प्रकार से होते हैं जैसे द्रव्य निक्षेप में दो भेद करते हैं आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप किसको जिस किसी की बात कर रहे अभी यहाँ विभक्ति की कर रहे तो उस संबंधी आगम को जानकार जीव जो उसमें उपयोग नहीं है उसको आगम द्रव्य निक्षेप उस पर घटित करते और नो आगम में वो न्यायिक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त। यहाँ भी भाव की बात चल रही भाव निक्षेप में भी दो भेद होते हैं आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। आगम भाव निक्षेप में उस संबंधी प्रावृत को जानने वाला और उसी में उपयोग वाला जीव लेना वर्तमान उपयोग उसी में है उस शास्त्र में है उसका उपयोग है उसको आगम भाव निक्षेप घटित करेंगे यहाँ आगम भाव विहत्ति कहेंगे कि विभक्ति संबंधी शास्त्र का जानकार उसी में उपयोग जिसका लगा है उसको आगम भाव विभक्ति कहेंगे। हाँ नौ अगम अभी बताएंगे, इसके अलावा जो उसमें उपयोग, अभी जैसे वहाँ तो गायक शरीर पर घटाते, यहाँ वैसा नहीं है लेना। अब आगे देखो, ये तो आगम भाव आगम, ये तो रेगुलर उसके भेद है। नीचे फुटनोट में कुछ अलग बता रहे हैं, शायद नीचे पढ़ेंगे पहले फुटनोट में। भाव विभक्तिस्तु जीवा जीव भाव भेदात विधा, यानी भाव विभक्ति जीव और अजीव भेद से दो प्रकार की बताई है। तत्र जीव भाव विभक्ति औदय का उपशमिक शायिक शावशमिक पारिणामिक सान्निपातिक भेदात षट प्रकार। क्या कहते हैं जीव भाव विभक्ति, विभक्ति ने असमानता की बात चल रही है, विभक्ति और विभक्ति, तो उसमें औदयिक औपशमिक जो पांच भाव है और उसके कैसे सान्निपातिक भेद से वो षट प्रकार के हैं। सान्निपातिक भेद है ने एक साथ होना, एक साथ होना, औदयिक के साथ कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे भेद अलग अलग करेंगे तो छह प्रकार के होते हैं। अजीव भाव विभक्तिस्तु भूतानाम वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान परिणाम। अजीव भाव में किसको लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि परिणाम जो है, संस्थान को भी लिया, स्पर्श रस गंध वर्ण और संस्थान उनके पर्याय। अमूर्तानाम गति स्थिति अवगाह वर्तन आदि कहीं, और जो अजीव में दो प्रकार लिए, अजीव में तो पुद्गल के लिए पहले स्पर्श रस गंध वर्ण आदि संस्थान, और अमूर्तिकों में अमूर्तिक अजीव ले गति स्थिति और अवगाहन वर्तना इत्यादि। हाँ, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्यों के जो भाव वहां लिए। अब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर जो भाव विभक्ति कही है सूत्र का अर्थ देखते हैं, वह दो प्रकार की है, आगम भाव विभक्ति और नो आगम भाव विभक्ति। पहले विभक्ति का निक्षेप करते समय जिस भाव विभक्ति को कहे आए हैं उसी का निर्देश करने के लिए चूर्णी सूत्र में जासा भाव विभक्ति यह पद दिया है। क्या कहते हैं, विभक्ति का निक्षेप कराए कहाँ, वो हमने चार पेज पर अभी दिया देखा था, चार नंबर के पृष्ठ पर देखा था ना अभी, अंतिम भेद होना भाव विभक्ति कहा था, भाव निक्षेप। इसलिए जो वह ये शब्द डाला, जो वह कौन से रेफरेंस के, जो पहले सूत्र में बताए रहे वह भाव विभक्ति। आगम का अर्थ श्रुत ज्ञान है और श्रुत ज्ञान से व्यतिरिक्त भाव को नो आगम कहते हैं। ये भाव में तो वर्तमान भाव लेना है, अभी वहां वो द्रव्य में जैसे शरीर पर घटित किया, जीव पर, उसी जीव पर घटित किया, वैसे यहाँ घटित नहीं होगा। द्रव्य निक्षेप में तो वह जीव है और उसके साथ संयोग में शरीर, उस पर भी उपचार किया था, अब यहाँ वो नहीं होगा। आगम भाव में वो जीव लेना, उसका उपयोग उसी में है, वो जानकार है, और नो आगम भाव में अन्य सभी लेना उसको छोड़कर। तो क्या ना, आगम का अर्थ श्रुत ज्ञान है, सेकंड लाइन में अंत में लिखा देखो, और श्रुत ज्ञान से व्यतिरिक्त यानी उनके अलावा अन्य भावों को तो नो आगम कहेंगे। इस प्रकार भाव विभक्ति दो प्रकार की ही होती है। अब ये आगम भाव विभक्ति क्या है उसको बता रहे हैं। आगम दो वजुत्तो भावुड़ पाहुड़ जानो, जो जीव विभक्ति विषयक शास्त्र को जानता है और उसमें उपयोग सहित है उसे आगम भाव विभक्ति कहते हैं, उस जीव को ही आगम भाव विभक्ति कह दिया। जो जीव विभक्ति का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का ज्ञाता है और उसमें उपयुक्त है, उसका उपयोग उसी में लगा है, अर्थात उसका उपयोग भी विभक्ति विषयक शास्त्र में लगा हुआ है, वह जीव आगम भाव विभक्ति कहलाता है। अब नो आगम की बात करेंगे। नो आगम दो भाव विहत्ति ओदयो ओदयस्य अविहत्ति। नो आगम भाव विभक्ति यथा, अन्य भाव बताना है अभी, श्रुत ज्ञान वाला आगम की बात छोड़कर उसके अलावा जो अन्य भाव है उस पर घटित करेंगे। तो कहते हैं यथा एक औदयिक भाव दूसरे औदयिक भाव के साथ अविभक्ति है, दोनों ही औदयिक है ना, तो अविभक्ति कहे। औदयिक, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और पारिणामिक के भेद से नौ आगम भाव पांच प्रकार का है। ये जो पांच भाव है वो सारे नौ आगम में आते हैं, नौ आगम भाव कहेंगे उसको, क्योंकि समस्त भावों का इन्हीं पांच भावों में अंतर्भाव हो जाता है। उनमें से एक औदयिक भाव दूसरे औदयिक भाव के साथ अविभक्ति है, क्योंकि उन दोनों भावों में औदयिक रूप से कोई भेद नहीं पाया जाता। ये कौन सा औदयिक भाव है उसकी चर्चा नहीं, वो औदयिक पना उनमें समान है। कौन से औदयिक भाव है आपको मालूम है? 21 है, बोलो। चार गति, चार कषाय, हाँ, छह लेश्या, तीन वेद, अज्ञान, असिद्धत्व, अच्छा, असंयम और मिथ्यात्व। वो राजा है ना, उसको भूलो मत। अब कहते हैं उदयो असमीयेण भावेण विहत्ति। ये कौन सा औदयिक है उसकी चर्चा नहीं यहाँ पर। औदयिक एक औदयिक भाव है, दूसरा भी औदयिक भाव है, तो औदयिक पना की अपेक्षा समानता है। बोले वो गति वाला हो, वेद वाला हो, कषाय वाला हो, वो भी औदयिक भाव है, ये भी औदयिक भाव है, इतनी समानता है। औदयो असमीयेण भावेण विहत्ति। औदयिक भाव औपशमिक भाव के साथ विभक्ति है, विभक्ति यानी विभाग है, वो भिन्न है, असमान है। शंका, औदयिक भाव औपशमिक भाव के साथ विभक्ति क्यों है? उसका समाधान, क्योंकि उदयजन्य भाव के साथ, ये उदयजन्य क्या होता है? हाँ, कर्मों के उदय की अपेक्षा है वहां, इसलिए उदयजन्य कहा। होता तो जीव में अपने में हो, परंतु वहां निमित्त को वहां कारण कहकर उससे उत्पन्न हुआ ऐसा कहने में आता है। तो उदयजन्य भाव के साथ उपशमजन्य भाव की समानता मानने में विरोध आता है। ये उपशमजन्य ने कर्मों का उपशम है वहां पर। उपशम भाव कौन कौन से है आपको मालूम है? हाँ, और औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये दो उपशम भाव है। उपशमजन्य भाव का औपशमिक भाव, इसलिए औदयिक भाव औपशमिक भाव के साथ विभक्ति है। ये प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए था। आगे का सूत्र, तदुभयेन अवत्तव्यम्। औदयिक और औपशमिक इन दोनों की एक साथ विवक्षा करने से औदयिक भाव अवक्तव्य है। क्या कहना चाहते हैं? औदयिक भाव की समानता है कि असमानता है? हम क्रम से कहेंगे तो औदयिक की औदयिक के साथ समानता है और औदयिक की औपशमिक के साथ असमानता है। एक साथ कह दो युगपत, तो नहीं कह सकते, इसलिए यहां कहा अवक्तव्य है। औदयिक और औपशमिक भावों के साथ संबंध को प्राप्त हुआ औदयिक भाव अवक्तव्य है, क्योंकि विभक्ति और अविभक्ति इन दोनों के एक साथ कथन करने का कोई उपाय नहीं पाया जाता। एक साथ जान सकते हैं परंतु कथन नहीं कर सकते हम। एवं शेषे सुई, इसी प्रकार शेष भावों में भी जानना चाहिए। ऐसे हरेक पर तो कितने भंग हो गए हरेक सबके मिलकर? हरेक का अपने अपने साथ अविभक्ति और हरेक का पर के साथ विभक्ति। हाँ, अवक्तव्य भी होगा, परंतु विभक्ति अविभक्ति पहले लगाएंगे ना। देखो, इसी प्रकार शेष भावों में भी जानना चाहिए। उन्होंने पहले तो छह ही कुछ बताए थे वहां पर, षट प्रकार, सन्निपातिक भेदात षट प्रकार बताए थे। यहाँ क्या कहते हम देखेंगे। जिस प्रकार औपशमिक भाव के संबंध से औदयिक भाव के दो भंग कहे हैं, उसी प्रकार क्षायिक, शायोपशमिक और पारिणामिक भावों के संबंध से भी औदयिक भाव के दो दो भंग कहना चाहिए। हरेक के साथ दो दो भंग लगेंगे। वे इस प्रकार है, औदयिक भाव क्षायोपशमिक भाव के साथ विभक्ति है तथा औदयिक और क्षायोपशमिक इन दोनों की युगपत विवक्षा होने से अवक्तव्य है। यानी हर एक में एक अपने साथ वो तो औदयिक का औदयिक के साथ अविभक्ति है। अब शेष कितने रहे? चार रहे। तो अन्य चार के साथ क्या कहेंगे? वो अविभक्ति और अवक्तव्य। इस तरह से हर एक में घटित हो गए। औदयिक भाव क्षायिक भाव के साथ विभक्ति है और औदयिक तथा क्षायिक इन दोनों की युगपत विवक्षा की अपेक्षा अवक्तव्य है। औदयिक पारिणामिक भाव के साथ विभक्ति है और औदयिक तथा पारिणामिक इन दोनों भावों की युगपत विवक्षा की अपेक्षा अवक्तव्य है। एक ग दिख रहे क्या? हाँ, एवं सौवत्थ। अभी ऐसे भंग सब पर लगाना, अपने साथ अविभक्ति और जो अन्य चार भाव है उनके साथ दो दो भंग हर एक में ऐसे लगा लेना। तो कहते एवं सौवत्थ, इसी प्रकार सर्वत्र जानना। जिस प्रकार औदयिक भाव के स्व और पर के संयोग से तीन भंग है, स्व के साथ एक भंग कौन सा? नहीं, उसको कौन सा? अविभक्ति। और पर के साथ विभक्ति और अवक्तव्य। तो पर में तो चारों पर आ गए उसके साथ। तो जिस प्रकार औदयिक भाव के स्व और पर के संयोग से तीन भंग कहे हैं, उसी प्रकार औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक और पारिणामिक भावों के भी अलग अलग तीन तीन भंग कहना चाहिए, अर्थात प्रत्येक के तीन तीन भंग होते हैं। अब यह केवल दो अंक लिख दिया वहां पर, तो शंकाकार पूछता है यति वृषभाचार्य ने यहां पर यह दो का अंक किस लिए रखा है? उसका समाधान, अपने हृदय में स्थित अर्थ का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने यहां दो का अंक रखा है। फिर शंका, वह अर्थ अक्षरों के द्वारा क्यों नहीं कहा? समाधान, वृत्ति सूत्र के अर्थ का कथन करने पर ग्रंथ बिना नाम वाला हो जाता है, इस भय से यति ऋषभ आचार्य ने अपने हृदय में स्थित अर्थ का अक्षरों द्वारा कथन नहीं किया। इसका खुलासा इस प्रकार है, वृत्ति सूत्र के अर्थ को कहने वाला ग्रंथ वृत्ति सूत्र तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो सूत्र का ही व्याख्यान करता है किंतु जिसकी शब्द रचना संक्षिप्त है और जिसमें सूत्र के समस्त अर्थ को संग्रहित कर लिया गया है उसे वृत्ति सूत्र कहते हैं। यह वृत्ति सूत्र की परिभाषा है। क्या है? सूत्र का व्याख्यान करता है और जिसकी शब्द रचना संक्षिप्त है और सूत्र में समस्त अर्थ को संग्रहित कर लेता है, उक्त ग्रंथ टीका भी नहीं हो सकता। इन्हें उसको वृत्ति सूत्र कहा, उसको टीका नहीं कह सकते, क्योंकि वृत्ति सूत्रों के विशद व्याख्यान को टीका कहते हैं। उक्त ग्रंथ पंजिका भी नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्ति सूत्रों के विषम पदों को स्पष्ट करने वाले विवरण को पंजिका कहते हैं। उक्त ग्रंथ पद्धति भी नहीं है, क्योंकि सूत्र और वृत्ति इन दोनों का जो विवरण है उसे पद्धति संज्ञा है। अतः यह ग्रंथ बिना नाम का न हो जाए, इसलिए यति वृषभ आचार्य ने अपने हृदय में स्थित अर्थ का अक्षरों द्वारा कथन न करके दो का अंक रखकर उसका सूचन मात्र कर दिया है। ये जो अलग अलग जो है टीका होती है, वृत्ति सूत्र होता है, सूत्र है, वृत्ति सूत्र है, टीका है, पंजिका है और पद्धति है, ये जो अलग अलग जो बातें हैं हमने पहले पुस्तक के प्रस्तावना में भी इसकी विस्तार से स्वरूप देखा था किसको क्या कहना। यहाँ उन्होंने तो स्वयं ही बता दिया है। अब शंका पूछेगा तो दो का अर्थ क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं, वह हृदय में स्थित अर्थ क्या है? उसका समाधान, द्रव्य विभक्ति, क्षेत्र विभक्ति, काल विभक्ति, भाव विभक्ति और संस्थान विभक्ति, इनमें से प्रत्येक के जो तीन तीन भंग कहे हैं उनमें से दो दो भंगों का ही ग्रहण करना चाहिए, अविभक्ति का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभक्ति का निक्षेप करते समय विभक्ति से विरुद्ध अविभक्ति का ग्रहण नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हैं? अविभक्ति का कथन तो कह दिया है समझाते समय, परंतु यह विभक्ति के निक्षेप कर रहे हैं, इसलिए वहां विभक्ति और अवक्तव्य दो ही निक्षेप हो सकेंगे। तीसरा भंग, जो भंग निक्षेप नहीं, भंग तीसरा नहीं हो सकता। कौन सा? अविभक्ति वाला। शंका, यदि ऐसा है तो अवक्तव्य भंग का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवक्तव्य भंग में भी विभक्ति का अर्थ नहीं पाया जाता। समझ में क्या कहते हैं? वहां भी अवक्तव्य में भी अविभक्ति की अपेक्षा आती ही है, तो उसको यहाँ क्यों कहा? दो संख्या में उसको क्यों ले लिया? समाधान, नहीं, क्योंकि विभक्ति के बिना विभक्ति और अविभक्ति इन दोनों का संयोग नहीं हो सकता। अवक्तव्य में दोनों का संयोग रूप जो है उसकी अपेक्षा अवक्तव्य कहते हैं। उसके न होने से अवक्तव्य भंग भी नहीं बनता। यदि उसमें विभक्ति नहीं होती तो यह भंग भी नहीं बनता। इससे प्रतीत होता है कि अवक्तव्य में विभक्ति का अर्थ पाया जाता है, और इसलिए विभक्ति में अवक्तव्य भंग का भी ग्रहण करना चाहिए। फिर शंका, विभक्ति और अविभक्ति का संयोग रूप अवक्तव्य भंग विभक्ति कैसे हो सकता है? वो अन्य भंग है, उसको विभक्ति में क्यों शामिल कर रहे हो? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि अवक्तव्य का विभक्ति से कथनचित भेद है सर्वथा नहीं, क्योंकि उसमें भी उसकी अपेक्षा तो आती है, इसलिए अवक्तव्य में भी विभक्ति रूप धर्म पाया जाता है। अब जो हमने इतना पढ़ा उसका विशेषार्थ फिर बताते हैं। विभक्ति का निक्षेप हमने जो चार नंबर के पृष्ठ पर देखा था कि नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल गणना संस्थान और भाव की अपेक्षा आठ प्रकार से किया है, उसी की हमने अभी विस्तार से चर्चा भी पढ़ी। इनमें से द्रव्य विभक्ति के नौ कर्म भेद के और क्षेत्र काल गणना संस्थान और भाव इन छओ में से प्रत्येक के विभक्ति अविभक्ति और अवक्तव्य ये तीन तीन भंग बताए हैं, तथा यह भी बताया है कि प्रकृति में विभक्ति और अवक्तव्य इन दो का ही ग्रहण किया है। यानी तीन तो बताए परंतु यहाँ दो का ग्रहण करना ये बता रहे। यहाँ अविभक्ति का ग्रहण क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण यह बतलाया है, यहाँ विभक्ति का प्रकरण है अतः अविभक्ति को यहाँ कोई अवकाश नहीं, पर अवक्तव्य विभक्ति सापेक्ष होने से उसका ग्रहण हो जाता है। यानी अवक्तव्य जब कहते हैं उसमें विभक्ति की अपेक्षा आती है ना, युगपद विभक्ति और अविभक्ति को नहीं कह सकते, तो वहां विभक्ति का भी अपेक्षा उसकी लेनी ही पड़ेगी। उसके बिना, दोनों को लिए बिना अवक्तव्य भंग नहीं बनता। यही सबब है कि सबब शब्द डाला, सबब यानी यही कारण है कि हाँ कभी सुना था सबब? सुना था ना? हाँ, इसका सबब कहते हैं, इसका क्या सबब है, यानी सबब है ना क्या कारण है। हाँ, हमने हम क्यों नहीं आए तो उसने कुछ सबब बता दिए। कारण है, कोई बहाना कारण इस तरह से, यही सबब है कि आगे सभी अनुयोग द्वारों में जहाँ विभक्ति पाई जाती है और जहाँ विभक्ति के साथ अविभक्ति पाई जाती है उनका ग्रहण किया है, पर जहाँ केवल अविभक्ति ही पाई जाती है ऐसे केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि मार्गणा स्थानों का विचार नहीं किया, वहाँ अविभक्ति ने समानता है ना, केवल दर्शन और केवल ज्ञान में समानता है, उनके अविभाग प्रतिच्छेद आदि समान है, उसकी यहाँ बात नहीं ली। चूर्णी सूत्रकार ने इस अभिप्राय का उल्लेख अक्षरों द्वारा न करके दो अंक द्वारा किया है। इस पर वीरसेन स्वामी का कहना है, यदि चूर्णी सूत्रकार इस अभिप्राय को अक्षरों द्वारा प्रकट करते तो वह मूल ग्रंथ पर चूर्णी सूत्र न होकर चूर्णी सूत्र के अर्थ का स्पष्टीकरण मात्र होता। ये चूर्णी सूत्र है ना, ग्रंथ का नाम क्या है? चूर्णी सूत्र। यदि वो स्वयं उसकी विस्तार करते तो वो तो टीका हो जाती है, सूत्र नहीं होता। और इस कारण ग्रंथ बिना नाम का हो जाता, क्योंकि कहीं सूत्र लिखे और कहीं अभी ऐसी टीकाएं करेंगे तो उसका चूर्णी सूत्र नाम बराबर नहीं होता। यही सबब है कि चूर्णी सूत्रकार ने उक्त अभिप्राय अंक द्वारा सूचित किया है। द्रव्य विभक्ति में प्रदेश भेद से द्रव्य भेद, क्षेत्र विभक्ति में क्षेत्र की न्यूनाधिकता से द्रव्य भेद, काल विभक्ति में समयाधिक की न्यूनाधिकता से द्रव्य भेद, ये तीनों में द्रव्य भेद लिए। द्रव्य विभक्ति में प्रदेश अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, गणना विभक्ति में संख्या भेद, संस्थान विभक्ति में आकार भेद और भाव विभक्ति में औदयिक आदि भाव भेद लिए गए हैं। अविभक्ति में इन सबकी समानता ली है और एक साथ विभक्ति और अविभक्ति दोनों की अपेक्षा अवक्तव्यता का ग्रहण किया है। ये सब द्रव्य विभक्ति आदि कर्म विभक्ति के 9 कर्म हैं। अतः इनका यहां इसी रूप से कथन किया है। कर्म विभक्ति का आगे विस्तार से कथन किया ही है, इसलिए यहां उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। फिर भी प्रकृत में कर्म विभक्ति से ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के एक भेद रूप मोहनीय कर्म का ग्रहण करना चाहिए। मोहनीय कर्म के साथ विभक्ति शब्द के जोड़ने की सार्थकता इसी में है। यद्यपि इस विषय में आगे और भी अनेक समाधान पाए जाते हैं, पर हमारी समझ से उनमें यह समाधान मुख्य है। कर्म विभक्ति ने वो मोहनीय अन्य से विभक्त है, वो ऐसा उसमें कुछ ग्रहण करना चाहते हैं। अब कहते हैं जा सा दव्य विहत्ति ये कम्म विहत्ति तीये पयदम। द्रव्य विभक्ति के 2 भेदों में जो कर्म विभक्ति कहे आए हैं, जिसको थप्पो किया था ना, किसमें? आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। नो आगम द्रव्य में ज्ञायक शरीर भावी और तद्व्यतिरिक्त। तद्व्यतिरिक्त में 2 भेद, कर्म और नो कर्म। नो कर्म की बात बताए, अब यहाँ कर्म की बात जो यहाँ विस्तार से अभी कहेंगे इसके आगे। तो द्रव्य विभक्ति के 2 भेदों में जो कर्म विभक्ति कहे आए हैं, प्रकृत कषाय प्रावृत में उससे प्रयोजन है, यानी कर्म विभक्ति की बात यहाँ बताएंगे। चूर्णी सूत्र में आए हुए जा सा इस वचन से द्रव्य विभक्ति का निर्देश किया है। वह द्रव्य विभक्ति कर्म विभक्ति और नो कर्म विभक्ति के भेद से 2 प्रकार की है। उनमें से जो कर्म विभक्ति नाम की द्रव्य विभक्ति है, प्रकृत कषाय प्रावृत में उससे प्रयोजन है। ये इस पुस्तक में तो उसी की चर्चा होगी। पहले तो निक्षेप बता दिए सब, अब उसमें से यहाँ कौन सा घटित होता है, किस पर ये चर्चा चलेगी, वो बात बताते हैं। तत्थ सुत्तगाहा। अब इस विषय में सूत्र गाथा देते हैं। इन्होंने मूल कषाय प्रावृत है उसकी ये जो सूत्र है, चूर्णी सूत्र है, तो मूल गाथाओं के बीच बीच में इन्होंने सूत्र लिखे हैं। अब कहते हैं इस विषय में सूत्र गाथा ओरिजिनल जो 180 में से जो चलेगी उसको यहाँ देंगे। अपने द्वारा स्वयं कहे गए 15 अर्थाधिकारों में चूर्णी सूत्रों का कथन करते हुए यति ऋषभ आचार्य अपने द्वारा माने गए अर्थाधिकारों को गाथा सूत्र में दिखाने के लिए यहाँ सूत्र गाथा देते हैं। इस प्रकार कहते हैं, हमने देखा था ये जो अर्थाधिकार ने विषयों का विभाजन अलग अलग पद्धति से किया है। मूल तो गुणधर भट्टारक ने अलग प्रकार से दिया है, यति ऋषभाचार्य ने अलग से दिया है। तो इसलिए यति ऋषभाचार्य की गाथा पहले दे चुके ना, 22 नंबर की गाथा आई कि नहीं आई? पहले ही आई। हाँ, अब यहाँ फिर दोबारा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग प्रकार से उसका विभाजन किया, इसलिए दोबारा ये गाथा है। ये 22 नंबर की गाथा दो बार आती है, पहले शुरू में ही आ गई और यहाँ पर भी फिर दोबारा आती है, इसलिए यहाँ उन्होंने फिर यहाँ नंबर देके उसको यहाँ प्रसिद्ध, हाँ चार नंबर दिया है, यहाँ वहाँ भी चार नंबर दिया था, क्योंकि ये विषय की गाथा है, चौथी 22 है ना, तो यहाँ विषय की चौथी गाथा है। पहले पुस्तक में हमने तीन देखी थी विषय की, उसके पहले कौन सी आई थी, 12 गाथा है, तो ये जो इंडेक्स जैसी, हाँ पूरा विषय क्या है उसको समझाया था, उसका विभाजन कैसे किया उसको समझाया था। फिर उसके बाद दो गाथाओं में तो नाम बताए थे, और उसके बाद 6 तो उसमें अद्धा परिमाण कुछ बताया था, काल बताया था, और उसके बाद इनकी शुरुआत हुई थी, तो इसलिए इसको चौथा नंबर दिया है। फिर दोबारा पढ़ेंगे इसको हम, पयड़िए मोहनिचा विहत्ति तहठि दिए अनुभागे उक्कसमण उक्कसम जीणम जीणम चठि दियम वा। पयड़िए और यहाँ क्या लिखा है, पगदिए, मोहनीय प्रकृति विभक्ति, मोहनीय स्थिति विभक्ति, ये सब मोहनीय पर घटित कर रहे हैं। मोहनीय अनुभाग विभक्ति, प्रदेश विषयक, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जीना जीन और स्थित्यंतिक, ये 6 अर्थाधिकार है। इन्होंने ये 6 अर्थाधिकार बना के यहाँ दिखाए, वहां मूल में उन्होंने हाँ 2 अलग अलग किए थे, उसकी भी हमने चर्चा की थी। अब चूर्णी सूत्रकार इस पर सूत्र लिखते हैं, पदच्छेदो तम जहा पयड़ी ए मोहनिज्जा विहत्ति ती ऐसा पयड़ी विहत्ति। अब इस गाथा का पदच्छेद करते हैं, वह इस प्रकार है, पदच्छेद यानी शब्द अलग अलग करके बताएंगे, गाथा में तो कहीं आगे पीछे लिखते हैं, तो कहते वह इस प्रकार है, पयड़ी ए मोहनिज्जा विहत्ति, इस पद से प्रकृति विभक्ति सूचित की है, कौन से शब्दों में कौन सा अर्थाधिकार आता है ये यहाँ बताना चाहते हैं। पद 4 प्रकार का है, हमने तो अभी तक 3 ही देखे थे पद, कौन से, हाँ अर्थपद, प्रमाण पद और मध्यम पद, अब यहाँ 4 बता रहे हैं कि पद 4 प्रकार है, अर्थपद, प्रमाण पद, मध्यम पद और व्यवस्था पद। उनमें से जितने अक्षरों से अर्थ का ज्ञान होता है उसे अर्थपद कहते हैं। कोई पदार्थ बताना है तो जितने अक्षरों का समूह है उसको अर्थपद कहेंगे। वाक्य और अर्थपद ये एकार्थवाची हैं, जिसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कुछ कहा ना हमने कि मैंने शास्त्र पढ़ा, ये वाक्य बनाए हमने, तो ये हो गया अर्थपद। अर्थात अर्थपद से आशय वाक्य का है। 8 अक्षरों से निष्पन्न हुआ एक प्रमाण पद होता है, मालूम है ऐसा कोई, हाँ नमस् समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, 8-8 का समूह है, और ऐसे 4 समूह आते हैं तो एक हम उसको श्लोक कहेंगे, इसे नम श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, ये 8-8-8-8 का समूह है, तो 32 अक्षरों में ये एक आर्या हो जाती है, छंद होता है ना यहाँ पर। अब मध्यम पद हमें मालूम है, 1634,83,07,888 अक्षरों का एक मध्यम पद होता है। जितने वाक्यों के समूह से एक अधिकार समाप्त होता है उसे व्यवस्था पद कहते हैं, यानी एक अधिकार में कितने वाक्य होते हैं उसको व्यवस्था पद कहेंगे, अथवा सुवंत और मिगंत पद को व्यवस्था पद कहते हैं। मालूम नहीं सुवंत और मिगंत, जैसे हम अकारांत वगैरह कहते हैं वैसे सुवंत मिगंत कुछ होने चाहिए, आगे अगर बताते तो देखेंगे। शंका, यहाँ इन पदों में से किस पद का पृथक्करण किया है? ऊपर लिखा ना, ये गाथा का पदच्छेद करते हैं तो पदों का अर्थ बताएंगे, तो यहाँ कौन से पद से बात है? समाधान, अधिकार का सूचक जो पयड़िये मोहनिज्जा विहत्ति, यह व्यवस्था पद है, उसका ही यहाँ पृथक्करण किया है। अधिकार बताने वाला है ना, ये पद कौन सा अधिकार आने वाला है, उस अधिकार में और भी बहुत सारे वाक्य होंगे तो उसका सूचक है, इसलिए यह व्यवस्था पद है। पयड़िये मोहनिज्जा विहत्ति, इसमें आया हुआ इति शब्द इस पद के स्वरूप का ज्ञान कराता है, अतः यह प्रकृति विभक्ति नाम का पहला अर्थाधिकार है, यह सिद्ध होता है। तह ठिदी चेदी ऐसा ठिदी विहत्ति दो, यह स्थिति विभक्ति नाम का दूसरा अर्थाधिकार, सॉरी ऊपर अर्थ, गाथा में आए हुए तह ठिदी चेदी इस पद से स्थिति विभक्ति का सूचन होता है। यह स्थिति विभक्ति नाम का दूसरा अर्थाधिकार है, शेष कथन सुगम है। अनुभागे ती अनुभाग विहत्ति तीन, ये छह उन्होंने अर्थाधिकार बनाए ना उसमें से, और कौन से पदों के द्वारा कौन सा अर्थाधिकार होता है, इसलिए आगे वहां उसका उसकी संख्या भी लिखी उन्होंने। गाथा में आए हुए अनुभागे पद से अनुभाग विभक्ति का सूचन होता है, चूंकि गाथा के अनुभागे इस पद द्वारा अनुभाग का कथन किया है, इसलिए अनुभाग विभक्ति नाम का तीसरा अर्थाधिकार समझना चाहिए। उक्कसम अनुक्कसम ती पदे से विहत्ति चार, उक्कसम अनुक्कसम इस पद से प्रदेश विभक्ति का सूचन होता है। गाथा में आए हुए उक्कसम अनुक्कसम इस पद से प्रदेश विभक्ति नाम के चौथे अर्थाधिकार का कथन किया है। झीणम अजीणम अजीणम ती पांच, झीणाझीन नाम का पांचवा अर्थाधिकार है। गाथा के झीणम अजीणम इस पद से झीणाझीन नाम का पांचवा अर्थाधिकार सूचित किया है। ठिदियम वाती छ, स्थित्यंतिक नाम का छठा अर्थाधिकार है। गाथा में आए हुए ठिदियम वा इस पद से स्थित्यंतिक नाम का छठा अर्थाधिकार सूचित किया है। इस प्रकार यति ऋषभ आचार्य के अभिप्राय अनुसार, ये उन्होंने अपने अभिप्राय के अनुसार अर्थाधिकार अलग बनाए, मूल विषय तो वही चलेगा, उसमें इन्होंने स्वयं कौन सा अर्थाधिकार है उसके नाम अलग अलग बताए, तो उनके अभिप्राय अनुसार इस गाथा के द्वारा छह अर्थाधिकार सूचित किए हैं, किंतु गुणधर भट्टारक के अभिप्राय अनुसार इस गाथा के द्वारा दो ही अर्थाधिकार कहे गए हैं ऐसा समझना चाहिए। इसकी बात हमने पहले भी देखी थी, इन्होंने छह अर्थाधिकार बताए हैं और उसी को इन्होंने दो में इंक्लूड किया, समाविष्ट किया। विशेषार्थ, यति ऋषभ आचार्य भी कषाय पाहुर के मूल अधिकार पंद्रह ही मानते हैं, इसका विशेष खुलासा हमने प्रथम भाग के पृष्ठ 197 पर किया है, उसकी बहुत विस्तार से चर्चा भी हुई थी वहां पर। ये 166 पृष्ठ पर उन्होंने टेबल बना के भी दिखाए थे किस तरह से उसके अर्थाधिकार बनाए हैं। तथ्य पयड़ी विहत्तिम वन्न इस्सामो, छह कौन कौन से बनाए उन्होंने? हाँ, प्रकृति विभक्ति, हाँ, दूसरा नंबर किसको लिया? हाँ, स्थिति विभक्ति दो नंबर की, उसके बाद अनुभाग विभक्ति, उक्कस अनुभाग पदेश विहत्ति, जीना जीन और हाँ स्थित्यंतिक, उनमें से प्रकृति विभक्ति का यहाँ वर्णन चलेगा। गाथा सूत्र में कहे गए छह अर्थाधिकारों में से पहले प्रकृति विभक्ति नामक अर्थाधिकार का कथन करते हैं। इससे यति ऋषभ आचार्य ने यह सूचित किया है कि मैं गुणधर आचार्य के द्वारा कहे गए 15 अर्थाधिकारों को छोड़कर स्वयं अपने द्वारा माने गए अर्थाधिकारों के अनुसार चूर्णी सूत्र कहता हूँ। उन्होंने उसका इंडेक्स बदल गया, नाम अलग बदल दिए, कथन तो वही हो गए और मूल गाथा भी वही होगी, या पहले 5 अधिकारों में उसका अलग अलग प्रकार से विभाजन है। यदि कहा जाए कि अपने द्वारा माने गए अर्थाधिकारों के अनुसार चूर्णी सूत्रों का कथन करने से यति ऋषभ आचार्य गुणधर आचार्य के प्रतिकूल है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यति ऋषभ आचार्य ने अर्थाधिकारों का अनियम दिखलाते हुए गुणधर आचार्य के मुख से निकले हुए अर्थाधिकारों का ही प्रतिपादन किया है। उन्हीं सब मूल गाथाओं को प्रतिपादन करेंगे, गाथा के अर्थ भी नहीं बदले हैं, परंतु उनके अर्थाधिकारों में विभाजन और अलग अलग पद्धति से किया है। विशेषार्थ पगदीय मोहनिज्जा इस गाथा में इत्यादि गाथा में स्वयं गुणधर आचार्य ने प्रकृति विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, प्रदेश विभक्ति, झीना झीना और स्थित्यंतिक इन 6 अधिकारों का निर्देश किया है। इससे इतना तो मालूम पड़ ही जाता है इन्हें इन 6 का कथन इष्ट है, पर उनके अभिप्राय अनुसार उनका समावेश 2 या 3 अधिकारों में हो जाता है। ये उसे अधिकार के उपभेद माने उन्होंने और इन्होंने सर्प को अलग अलग नाम दिया। यद्यपि यति ऋषभ आचार्य ने उक्त 6 अधिकारों का स्वतंत्र रूप से कथन किया है, जिससे अधिकारों की संख्या का ही भंग हो जाता है, फिर भी उनका ऐसा करना गुणधर आचार्य के कथन के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि स्वयं गुणधर आचार्य ने जिन विषयों का संकेत किया है उन्हीं का यति ऋषभ आचार्य ने स्वतंत्र अधिकारों द्वारा विस्तार से कथन किया है। उन्होंने तो उनके नाम बता दिए थे, उसका संकेत कर दिया था। तात्पर्य यह है कि गुणधर आचार्य ने पगदीय मोहनिज्जा इत्यादि गाथा में प्रकृति विभक्ति, स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति इन 3 को मिलाकर 1 अधिकार सूचित किया है, तथा प्रदेश विभक्ति, झीना झीना और स्थित्यंतिक इन 3 को मिलाकर 2 अधिकार सूचित किया है। 3 और 3 1 में बता दें उन्होंने। पर यति ऋषभ आचार्य ने इन प्रकृति विभक्ति आदि का कथन पृथक पृथक किया है। उनके तत्थ पयड़ विहत्तिम वर्ण इस्सामो इत्यादि चूर्णी सूत्रों से जाना जाता है, क्योंकि उसमें से 1 का ही लिया और अभी उसका मैं वर्णन करता हूँ, ऐसा चूर्णी सूत्र उन्होंने बता दिया। इस प्रकार यद्यपि यति ऋषभ आचार्य 2 अधिकारों को 6 अधिकारों में बांट दिया है, आचार्य ने चाहिए, फिर भी उन्होंने उन्हीं विषयों का कथन किया है। ये ने शब्द डालना बीच में। यद्यपि यति ऋषभ आचार्य ने 2 अधिकारों को 6 अधिकारों में बांट दिया है, फिर भी उन्होंने उन्हीं विषयों का कथन किया है जिनका समावेश उक्त 2 अधिकारों में किया गया है। इस प्रकार यद्यपि अधिकारों की संख्या का भंग हो जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 कहे और इन्होंने 6 कहे, उसमें कोई अलग हो जाता है, तो भी फिर भी उनका यह कथन गुणधर आचार्य द्वारा कहे गए विषय के प्रतिकूल नहीं है। विषयों में कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई विरोध नहीं है, वही विषय बताने वाले हैं, उसका विभाजन 6 में कर दिया। अब यहाँ से वो जो प्रकृति विभक्ति का कथन यहाँ से चलेगा। पयड़ी विहत्ति दुहिया, मूल पयड़ी विहत्ति च उत्तर पयड़ी विहत्ति च। प्रकृति विभक्ति 2 प्रकार की है, मूल प्रकृति विभक्ति और उत्तर प्रकृति विभक्ति। शंका, चूर्णी सूत्र में च शब्द किस लिए दिया है? उसका समाधान, समुच्चय रूप अर्थ के प्रकट करने के लिए च शब्द दिया है। फिर शंका, यदि ऐसा है तो 1 च शब्द से ही काम चल जाता, अतः 2 च शब्द अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। दो बार लिखा ना, च मूल पयड़ी विहत्ति च उत्तर पयड़ी विहत्ति च। समाधान, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय में स्थित जीवों के उपकार के लिए चूर्णी सूत्र में दो शब्द दिए गए हैं, जिससे यह अर्थ निकलता है द्रव्यार्थिक नय में स्थित जीवों की अपेक्षा प्रकृति विभक्ति के मूल प्रकृति विभक्ति और उत्तर प्रकृति विभक्ति ये दो भेद हैं, और पर्यायार्थिक नय में स्थित जीवों की अपेक्षा उत्तर प्रकृति विभक्ति और मूल प्रकृति विभक्ति ये दो भेद हैं। अतः दो च शब्द देने में पुनरुक्त दोष नहीं है। हाँ, इन्होंने उस द्रव्यार्थिक नय वालों ने पहले मूल प्रकृति लिया फिर उत्तर प्रकृति लिया, क्योंकि वो तो मूल प्रकृति कहने से उत्तर प्रकृतियों को जान लेते हैं, और इन्होंने पहले उत्तर प्रकृति लिया और फिर माया ने मूल प्रकृति लिए। शंका, मूल प्रकृति एक ही है और पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर मूल प्रकृति बन नहीं सकती। हाँ,
स्वार्थी लोग हैं उनके लिए पहले अनंत भगवान को याद किया गया है, और जो अच्छे लोग उनके पहले निकल पे दोनों चल लगा दे तो पहले उनको सिद्ध भगवान को याद करें
ना, कोई पहले सिद्धों को कोई पहले अनंत, ऐसा देखो यहाँ क्या कहना, मूल प्रकृति तो एक है और पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर मूल प्रकृति बन नहीं सकती, क्योंकि पर्यायार्थिक नय ने भेद करके, भेद करने वाला वो पर्यायार्थिक, तो वहाँ एक प्रकृति नहीं बन सकेगी क्योंकि भेद करना है। अतः उसके साथ विभक्ति शब्द का व्यवहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि भेद के बिना विभक्ति शब्द का व्यवहार नहीं बन सकता, ऐसे प्रश्न है। समाधान, यदि यहाँ मूल प्रकृति पद से आठों कर्मों की एक रूप से विवक्षा की गई होती तो यह कहना ठीक होता, परंतु यहाँ मूल प्रकृति के एक भेद मोनी की विवक्षा है, अतः मूल प्रकृति में विभक्तिपना बन जाता है। उसको भिन्नपना बताना है तो मूल प्रकृति आठ है, उनमें से एक मोहनी की विवक्षा है, इसलिए मूल प्रकृति में भी वो भेद है, ये सिद्ध हो जाता है, मूल प्रकृति का एक भेद। शंका, यहाँ मोहनी कर्म ही विवक्षित है, यह कैसे जाना? समाधान, पयड़ीय मोहन इज्जा इस महाधिकार से जाना जाता है कि यहाँ मोहनीय कर्म ही विवक्षित है। पयड़ीय मोहन इज्जा बता दिया उन्होंने, मोहनीय की ही यहाँ बात चलेगी सब पूरे पुस्तक में। आठों प्रकृतियों का एक ही स्वभाव है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, आठों को मिलाकर एक प्रकृति मूल प्रकृति कहेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका एक स्वभाव है ही नहीं है, क्योंकि सम्यक और चारित्र का विनाश करना मोहनीय का स्वभाव है, ज्ञान का आच्छादन करना ज्ञानावरण का स्वभाव है, दर्शन का विनाश करना दर्शनावरण का स्वभाव है, सुख और दुख को उत्पन्न करना वेदनीय का स्वभाव है, मनुष्य आदि पर्याय में रोक रखना आयु कर्म का स्वभाव है। आयु अच्छा है ना, आयु कर्म, अरे पर्याय से हमको हटा नहीं देता, हटने की बारी आई तो हम डॉक्टर के पास जाके इलाज करते हैं कहीं खत्म ना हो, कहीं हम छूट नहीं जावे, तो हम पर्याय में रहना चाहते हैं। शरीर गति जाति और वर्णादि को उत्पन्न करना नाम कर्म का स्वभाव है, ऊंच और नीच गोत्र में उत्पन्न कराना गोत्र कर्म का स्वभाव है, और विघ्न करने में व्यापार करना अंतराय कर्म का स्वभाव है। इस प्रकार आठों कर्मों में स्वभाव भेद देखा जाता है। शंका, भाववाची विभक्ति शब्द द्रव्यवाची कर्म के अर्थ में कैसे रहता है? उसका समाधान, अधिकरण साधन में व्युत्पादित विभक्ति शब्द द्रव्य कर्म में रहता है, ऐसा मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। इसी का यहाँ फिर विशेषार्थ बताते हैं। ऊपर यह शंका उठाई गई है कि विभक्ति शब्द द्रव्य कर्म में कैसे रहता है, इस शंका का यह आशय प्रतीत होता है कि अभी शंका क्या है उसको समझाते, कि विभजनम विभक्ति ही, विभाजन करना वो विभक्ति। इस प्रकार निरुक्ति करने से वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से भाव में त्रियां तीन, इन सूत्र से तीन प्रत्यय करने पर विभक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ विभाग करना होता है। विभक्ति का अर्थ क्या है? विभाग करना। पर प्रकृत में द्रव्य कर्म मोहनीय के स्थान में या उसके साथ विभक्ति शब्द आता है जो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मोहनीय द्रव्य कर्म शब्द द्रव्यवाची है, उसके स्थान में या उसके साथ भाववाची विभक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये तो शंकाकार की शंका है। इस शंका का वीरसेन स्वामी ने इस प्रकार समाधान किया है, प्रकृत में जो विभक्ति शब्द आता है वह भाव में व्युत्पादित विभक्ति शब्द न होकर अधिकरण में व्युत्पादित विभक्ति शब्द है। अधिकरण है जिसमें वो उसका आधार, अतः व्युत्पादित विभक्ति ने उससे उत्पन्न हुआ शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, तो भाव की अपेक्षा वो उत्पन्न नहीं हुआ, यहाँ तो अधिकरण उसका कर्म उसका अधिकरण है। अतः द्रव्य कर्म के स्थान में या विशेषण विशेष रूप विशेष भाव रूप से द्रव्य कर्म के साथ विभक्ति शब्द के प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। जब कर्मण्यधिकरणे च इस सूत्र से स्त्रियांक्तिन इस सूत्र में अधिकरणे इस पद की अनुवृत्ति कर लेते हैं, तब अधिकरण में भी विभक्ति शब्द बन जाता है। ये तो व्याकरण की बात यहाँ बता दी। ऐसी हालत में विभक्ति शब्द की निरुक्ति विभज्यते अस्याम इति विभक्ति यह होगी, यानी जिसमें विभक्ति की जाती है। विभज्यते अस्याम, जिसका अर्थ जिसमें विभाग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं, यह होता है। अब मूल पयड़ी विहत्तीय इमानी अठ नियोग दाराणी तम जहा सामितम कालो अंतरम नाना जीवे ही भंग विषयो कालो अंतरम भागा भागो अप्पा भोगेति। मूल प्रकृति विभक्ति के विषय में आठ नियोग द्वार है, वे इस प्रकार है। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल और चाहिए और हुआ अंतर, तथा नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय काल अंतर भागा भाग और अल्प बहुत्व। शंका, उच्चारणाचार्य ने मूल प्रकृति विभक्ति के विषय में 17 अर्थाधिकार कहे हैं और यति वृषभाचार्य ने 8 ही अर्थाधिकार कहे हैं, इसलिए इन दोनों व्याख्यानों में विरोध क्यों नहीं आता? पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी, वहां 12 और 15 की बात थी। नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिक न्याय और द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर उक्त दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं आता। आगे का बड़ा जो प्रश्न वो कल ले लेंगे, शंका समाधान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।